आज है 7 नवंबर दिन शनिवार। स्वागत है आपका इंडिया बोल में, मैं हूँ सुशीला सिंह। कल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। राज्य में सरकार महागठबंधन या एनडीए की बनेगी। बिहार में जहां जनता को नतीजों का इंतजार है, वहीं विश्लेषकों को भी। तो इन चुनाव के नतीजों का असर कितना पड़ेगा आगामी विधानसभा चुनाव पर और देश की राजनीति पर, इसी मुद्दे पर होगी आज इंडिया बोल में चर्चा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमें कॉल करें 1811-7000 और 1811-7001 पर। इंडिया बोल शुरू करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। मिस्र के मुताबिक विदेशी खुफिया एजेंसियों ने सिनाई में दुर्घटनाग्रस्त विमान में बम रखे होने के बारे में कोई भी जानकारी उसकी सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा नहीं की है। मिस्र के विदेश मंत्री सामेह शौकरी ने कहा कि विदेशी सरकारों ने चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई में आपसी सहयोग की मिस्र की अपील को तवज्जो नहीं दी है। इससे पहले ब्रिटेन ने आशंका जताई थी कि हो सकता है कि रूसी विमान हादसा बम की वजह से हुआ हो। इस बीच चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने एक और वीडियो जारी कर दावा किया है कि बम धमाका उसी ने किया है, हालांकि उसने इसके बारे में कोई सबूत नहीं दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर के लिए 80,000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत ही कश्मीर के विकास का रास्ता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लिए दुनिया की किसी भी सलाह की उन्हें जरूरत नहीं है और किसी के विश्लेषण की भी उन्हें जरूरत नहीं है। इस रैली में मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। वहीं अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने कश्मीर के लिए आर्थिक पैकेज को खारिज करते हुए कहा,
यहाँ कोई मसला, यहाँ पैकेज का कोई मसला नहीं है। पैकेज से यहाँ कोई मसला हल नहीं हो जाएगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मसला हल हो जाएगा कि जब यहाँ के लोगों को हकीकत खुदराजत के इस्तेमाल का मौका दिया जाएगा।
ये थे हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के शब्द। चीन और ताइवान के नेताओं के बीच 67 साल के बाद ऐतिहासिक बातचीत आज हुई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ताइवान के राष्ट्रपति मा यिंग जियो ने आज सिंगापुर में मुलाकात की। चीन ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है, जो कि कभी न कभी चीन से वापस जुड़ जाएगा, लेकिन ताइवान के लोग इसे स्वतंत्र मानते हैं और चीन के बढ़ते वर्चस्व को लेकर चिंतित हैं। राष्ट्रपति मा ने बैठक शुरू होने से पहले कहा कि दोनों तरफ के लोगों को एक दूसरे के मूल्यों का सम्मान करना चाहिए। वहीं शी जिनपिंग ने कहा कि हम एक परिवार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास में इस मुलाकात को याद रखा जाएगा। सीरिया में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा है कि चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने 37 असीरियाई ईसाई लोगों को रिहा कर दिया है, जिनमें ज्यादातर बुजुर्ग बताए जा रहे हैं। रिहा किए गए लोग उन लोगों में से हैं जिन्हें उत्तर पूर्वी सीरिया में इस साल की शुरुआत में बंदी बना लिया गया था। असीरियाई ह्यूमन राइट्स नेटवर्क ने बताया है कि रिहा किए गए लोग हास्का प्रांत के ताल तम्र शहर ले जाए गए हैं। सीरिया और इराक में अपने कब्जे वाले इलाकों में इस्लामिक स्टेट ने सैकड़ों लोगों को बंधक बना रखा है। अमेरिका के लुइसियाना में एक 6 वर्षीय बच्चे को गोली मारने के मामले में 2 पुलिस अधिकारियों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। इन दोनों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस
आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल। बीबीसी इंडिया बोल।
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कल यानी 8 नवंबर को ये स्पष्ट हो जाएगा कि राज्य में महागठबंधन या फिर एनडीए की सरकार बनेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने बिहार के चुनाव को मदर ऑफ ऑल इलेक्शन कहा था। 243 सीटों वाली विधानसभा के नतीजे दोनों ही गठबंधनों के भविष्य और उनकी रणनीति को तय करेंगे। बिहार के चुनाव नतीजों का क्या असर होगा देश की राजनीति पर, आगामी विधानसभा चुनाव पर, इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे आज इंडिया बोल में चर्चा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1811-7001 पर। मेरे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा, आरएसएस विचारक फोन लाइन पर हैं राकेश सिन्हा और पटना से हैं बीबीसी संवाददाता पंकज प्रियदर्शी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है कार्यक्रम में। इस विषय पर बहुत से लोगों ने फेसबुक पर प्रतिक्रियाएं दी हैं। बस हम श्रोताओं से इतनी गुजारिश करेंगे कि यहाँ हम बिहार के नतीजों से होने वाले असर पर चर्चा करेंगे, ना कि एग्जिट पोल या कौन पार्टी जीतेगी या कौन सी पार्टी हारेगी। इसीलिए आप इससे अलग हमारे मेहमानों या पंकज प्रियदर्शी से जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, अपनी राय रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं। और सबसे पहले चलते हैं अपने श्रोताओं के पास, देखते हैं हमारे साथ तो कौन जुड़ चुका है। जी कहाँ से बोल रहे हैं?
हेलो
जी, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे, कहाँ से बोल रहे हैं आप, अपना नाम बताएं।
राहुल सिंह फतेहपुर से।
जी राहुल जी, बताइए आपने विषय जान लिया है, क्या कहना चाहेंगे आप?
जी हम तो ये चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने।
जी क्यों, आप ऐसा क्यों चाहते हैं बीजेपी की सरकार बने?
देखिए भारत सरकार अच्छा कार्य कर रही है, तो अब बिहार का विकास भी होना चाहिए।
जी जी राहुल जी, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर श्रोताओं को एक बार फिर बता दें, हम आपसे यहाँ ये नहीं जानना चाहते हैं कि किसकी सरकार बिहार में बननी चाहिए, बल्कि हम ये चाहते हैं कि इससे क्या असर पड़ेगा, अगर बिहार में जिस जो भी सरकार आती है उससे राज्य पर आगामी विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। और सीधे चलते हैं पंकज प्रियदर्शी के पास, जो पटना में मौजूद हैं और जिन्होंने 3 चरण का चुनाव कवर किया और इलाकों में घूम घूम कर रिपोर्टिंग की है। पंकज, आपसे यहाँ ये जानना चाहेंगे कि बस आज रात का इंतज़ार ही है, आखिरी रात है आज की, कल माफ कीजिएगा 8 बजे सुबह की वोटिंग मशीन खुल जाएंगी, नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, क्या सुगबुगाहट है?
देखिए सुशीला, ये पहला ऐसा चुनाव है जिसके नतीजे के बारे में बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो हम आज बीजेपी और जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल, इन तीनों के कार्यालय से होकर गुजरे थे, वहां गया था मैं, सब जगह वही स्थिति है, कोई भी खुल के ये नहीं कह रहा है कि उसकी स्थिति क्या होने वाली है इस नतीजे के बाद। लेकिन एक चीज जो तय है वो ये है कि हर गुट, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन, वो दावे कर रहा है कि उसकी जीत तो तय है। अगर आप उनसे अनौपचारिक रूप से बात करें तो वो कहेंगे कि बहुत कम मार्जिन रहने वाला है लेकिन हम जीतेंगे। तो उत्साह दोनों गुटों में ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल के नतीजे के बाद कोई गुट दब गया हो या किसी किसी गुट में निराशा की लहर दौड़ी हो, ऐसा कुछ नहीं है। हर गुट उत्साहित है और हर गुट अपने अपने दावे कर रहा है, तर्क भी दे रहा है कि यहाँ ये समीकरण चला है या ये समीकरण चला। आपको पता है कि बिहार के लोग राजनीतिक रूप से इतने सक्रिय, इतने जागरूक हैं, उन्हें हर सीटों के बारे में पता है।
जी आप हमारे साथ बने रहिएगा फोन लाइन पर, और भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देखते कौन है अगले कॉलर। जी कहाँ से बोल रहे हैं?
हम सहरसा से बोल रहे हैं, मोहम्मद आरिफ हुसैन।
जी बताइए मोहम्मद जी।
मेरा मानना है कि बीजेपी की सरकार ना बन करके ये महागठबंधन की सरकार बनेगी तो अच्छे से काम होगा। किए थे नीतीश कुमार पिछले राजकाल में, उसमें अच्छे से काम होगा, मेरा अपना मानना है।
जी मोहम्मद जी, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही थी, लाइन में थोड़ी गड़बड़ी थी, लेकिन आप जो मैं समझ पाई हूँ, आप ये कह रहे थे कि नीतीश के, अगर नीतीश जी आते हैं तो उनके कार्यकाल में कामकाज जो है वो अच्छा हुआ है,
अच्छे से करेंगे,
अच्छे से करेंगे भी आपको ये उम्मीद है? जी आपको जी बहुत बहुत धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए मोहम्मद जी। अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी कहिए, कहाँ से बोल रहे हैं?
हम सर मधुबनी जिला से बोल रहे हैं, बोरहर गांव से, नेपाल बॉर्डर इलाके से हम बोल रहे हैं।
जी क्या नाम हुआ आपका?
मेरा नाम सरोज कुमार ठाकुर हुआ।
जी सरोज जी, आपने अभी मोहम्मद जी की बात सुनी, उनका कहना है कि नीतीश के कार्यकाल में अच्छा काम हुआ है और अगर वो वापस आते हैं तो अच्छा काम होगा।
जी नहीं, हम इस बात को काट रहे हैं सर, नीतीश के कार्यकाल को देख रहे हैं, सबसे पहले वो शिक्षा के स्तर गिरा दिए हैं मैंने बिहार में, है ना
जी।
वो ये नहीं देख रहे कि आज जो बच्चे 5वीं में पढ़ रहे हैं उसको 5वीं क्लास का हिज्जा नहीं आ रहा है, सबसे बड़ी वो शिक्षा के स्तर गिराए हैं, इसलिए हम मोहम्मद जी की बात से सहमत नहीं है। हमारे बिहार में परिवर्तन होना चाहिए और बिहार में बीजेपी का सरकार होना चाहिए, अनिवार्य है।
जी बहुत बहुत अपनी बात रखने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ सरोज जी, देखते हैं हमारे साथ अगले कॉलर कौन है। हमारे साथ अगले कॉलर नहीं है, आप सुन रहे हैं सारी बातचीत विनोद जी,
माफ आप, आपकी बात हम सुन रहे हैं।
जी जी जी, हम मेहमान को यहाँ पर शामिल करना चाह रहे हैं कार्यक्रम में। विनोद जी ये बताइए कि 243 विधानसभा सीटें हैं बिहार में और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी या फिर एनडीए की सरकार बनेगी, कितना अहम है ये चुनाव?
देखिए मेरी नज़र में भारत के इतिहास में कभी भी कोई प्रांतीय चुनाव इतना अहम नहीं रहा, ये पहली बार है कि कोई प्रांतीय चुनाव इतना अहम हो गया है। इसका कारण साफ है कि इसमें प्रधानमंत्री ने अपनी व्यक्तिगत साख की इन्वेस्टमेंट की और उसके साथ साथ दो बड़े प्रांतीय नेता नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ मिलकर उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।
जी,
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा गया कि ये तो पहले कांग्रेस के लिए किया जाता था कि कांग्रेस एक तरफ होती थी और सारा विपक्ष दूसरी तरफ, और चूंकि आज के दिन ये जो लाइनअप है वो उनके खिलाफ है, तो उनका कहने का मतलब यह है कि आज के दिन हम कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर हमने उसको रिप्लेस कर दिया। ये बात सच है, एक और अहम कारण है। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो बिहार का चुनाव है, ये बिहार किस तरफ जाता है उस पर भारत किस तरफ जाता है बहुत निर्भर करेगा, क्योंकि ये चुनाव इसलिए भी अहम है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उनके पास राज्यसभा में अपर हाउस में पार्लियामेंट के मेजॉरिटी नहीं है। और यहाँ पर अगर वो आंकड़े जुटा लेते हैं बिहार असेंबली में, तो वहाँ से चुनकर वो अपने नुमाइंदे राज्यसभा में भेज सकते हैं
और करीब 11 आएंगे वहाँ से।
हाँ, तो वो अपनी बढ़त वहाँ पर अपने आंकड़े बढ़ा सकते हैं और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लेजिस्लेशन है, जो कि कानून पारित होते हैं, वो दोनों हाउसेस के द्वारा होते
बिल्कुल
हैं। और जो GST है उसको भी अपर हाउस में जाना है, लैंड बिल भी, क्योंकि अपर हाउस में उस पर एक राय नहीं थी तो विड्रॉ करना पड़ा सरकार को। तो बहुत सा जो आर्थिक उदारीकरण का जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है सरकार का, इस पर निर्भर करता है, और प्रधानमंत्री की और अमित शाह की साख भी इस पर निर्भर करती है।
बिल्कुल,
क्योंकि ये माना जाता है कि अगर बिहार के नतीजे विपरीत जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उनकी पार्टी के जो व्यूहरचना है उसमें भी फेरबदल होने की संभावना है। तो इसलिए प्रधानमंत्री की अपनी इमेज और पार्टी का मुस्तकबिल, भाजपा का और देश का मुस्तकबिल, ये सब एक साथ जुड़ गए हैं। और अगर कहीं गठबंधन जीत जाता है तो फिर विपक्ष का मुस्तकबिल भी उसके साथ जुड़ गया है, हार के बावजूद भी जुड़ गया है।
और अमित शाह तो बहुत महीनों से वहाँ पर हैं और पूरी तैयारी कर रहे थे चुनाव की। जी, देखते हैं क्या नतीजे ही बताएंगे। देखते हैं अगले कॉलर कौन है हमारे साथ।
हाँ सर, मैं रामचंद्र गुजर।
जी रामचंद्र जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
ये सिंगरौली जिला, सर मध्य प्रदेश से।
जी बताइए, आप पूरी चर्चा सुन रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? जी बताइए।
चर्चा करना चाहते हैं सर कि दोनों गठबंधनों के लिए परीक्षा का समय हो गया है और इसलिए मोदी सरकार को जीत होगी तो अच्छा ही मिलेगी, यदि हार हो गई तो बुरा ही माना जाएगा।
आपको ऐसा क्यों लगता है?
इसलिए लग रहा है सर कि यदि मोदी सरकार काम तो अच्छी कर रही है, पर कुछ जो लोग उनके अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए यदि हार हो गई तो ये माना जाएगा मोदी सरकार ठीक नहीं काम किया।
आपको क्या लगता है कि कैसा काम हो रहा है देश में जब से मोदी सरकार आई है, आपको क्या लगा है कि कितना असर पड़ा है?
काम तो बहुत अच्छा हो रहा है सर देखने में, पर जो निचले स्तर के कर्मचारी कार्यकर्ता हैं सर, वही बेमाने के रहने, काम तो बहुत अच्छा मोदी सरकार कर रहा
है। अच्छा, आपकी जीवन शैली में क्या बदलाव आए हैं?
जीवन शैली में बदलाव है सब सर ऑनलाइन कर दिया, जैसे अपने मजदूरी का हुआ तो खाता में पैसा आ रहा है और राशन कार्ड की सब चीज से सरकारी स्तर पर हो गया है।
तो आपको लगता है कि आपका जीवन आसान हुआ है उससे?
जीवन आसान हो रहा है सर, हो नहीं गया है, यदि निचले तक लागू हो जाए तो पूरा काम तो बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है।
पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, बिजली नहीं है गांव में।
देखिए सर कि ऐसा है कि हम लोग यहाँ रहते हैं तो इंटरनेट बहुत कम यूज होता है, देहात में बहुत सीधे साधे लोग हैं, रेडियो मोबाइल से ही काम चलता है सर।
जी,
जैसे मोबाइल से सब सुविधा ले पा रहे हैं कि बैंक में कितना पैसा आया नहीं आया, कितना घोटाला हो रहा है कितना नहीं, ये सब कुछ जानकारी होते हुए निचले आदमी दबा हुआ है सर अभी, जो कि छोटा आदमी कहीं सर बात नहीं कर पाता है, उसको दबंग आदमी दाब लेते हैं सर, यही कारण है मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है सर।
जी रामचंद्र जी, अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं।
धन्यवाद सर। नमस्कार
जी। जी कहिए, कहाँ से बोल रहे हैं? ठीक है, फेसबुक पर हमारे साथ अभी कोई फोन लाइन पे नहीं है। फेसबुक पर एक व्यक्ति ने अपनी राय रखी है, इनका नाम है मुकुल कुमार। ये कहते हैं कि अगर बात बीजेपी की करें तो मुझे नहीं लगता कि उन पर कुछ खास असर पड़ेगा। कुछ लोगों का ये मानना है कि बीजेपी की हार से मोदी की साख में कमी आएगी, लेकिन मुझे ये उतना सही नहीं लगता। बिहार में जिस तरह से जाति आधारित लोग वोट देते हैं, उस हिसाब से बीजेपी का जीतना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए बिहार से हार का उतना असर पड़ेगा नहीं। वहीं सौरभ वर्मा एक छात्र हैं, उनका कहना है कि मेरा मानना है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो पार्टी के भीतर ही टकराहट शुरू होने की संभावना हो सकती है। 15 साल तक शासन में रही राजद ने कभी विकास की राजनीति नहीं की, माननीय मुख्यमंत्री ने उनके साथ जुड़कर अपनी सीधी स्वार्थपरकता का परिचय दिया है। क्या कहेंगे विनोद जी?
देखिए, राजनीति में ऐसे गठबंधन होते रहते हैं। अब जो फेसबुक पे दूसरा कमेंट है उसके लिए मेरा जवाब यह है कि रामविलास पासवान जो थे उन्होंने परस्पर जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका जो टाइप था छोड़ा 2002 में गुजरात के दंगों के बाद, परस्पर उनकी वो अपने आप को एक उसको एक तमगे की तरह अपनी छाती पे लगा के घूमते थे कि भाई हमने उस मुद्दे पर वाजपेयी जी की सरकार छोड़ दी। अब आज के दिन उन्हीं के साथ भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में गठबंधन है और बिहार में भी गठबंधन है। तो पॉलिटिक्स में तो कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, दे आर नो परमानेंट एनिमीज़ और फ्रेंड्स इन पॉलिटिक्स। और ख़ासकर जब पॉलिटी इतनी टूट टाट गई हो, इतनी विघटित हो गई हो कि आप मिलकर ही सरकार बना सकते हैं। और मान लीजिए कि कल को अगर बिहार में जो लोगों का मैंडेट आता है, जजमेंट आता है, उसमें अगर किसी को भी बहुमत नहीं मिलता तो फिर ये माना जाता है कि जनता का आदेश है कि मिलजुल के काम करो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर नीतीश और लालू इकट्ठे हुए हैं, वो एक ही परिवार था, जनता परिवार, जिसको कि सोशल जस्टिस परिवार भी कहते हैं, और वो अलग हो गए। और वो ये बात सच है कि लालू जी के कार्यकाल में बहुत से अराजक तत्व जो है हावी हो गए थे, और वो एक ऐसा इतिहास है उनका जिसको कि आसानी से शायद बिहार के लोग ना भुला पाए। लेकिन उसके साथ साथ ये कहना भी उचित होगा कि नीतीश कुमार का जो कार्यकाल था उसमें काफ़ी काम हुआ। ये बात सच है कि शिक्षा के क्षेत्र में उतना काम नहीं हुआ, लेकिन बिजली के क्षेत्र में हुआ, रोड कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हुआ।
लेकिन ये कहा जाता है कि पहले शुरुआती 5 सालों में हुआ, उसके बाद नहीं।
देखिए, ये तो भाजपा का अब क्लेप है ना। नीतीश कुमार तो ये कहते हैं कि हम तो परस्पर काम करते रहे। अच्छा, मान भी लिया जाए कि सिर्फ भाजपा के कार्यकाल में हुआ तो उस वक्त भी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। और हम मैं भी बिहार गया था और काफ़ी मैं वहाँ पर सफ़र किया मैंने बिहार में, और मुझे एक भी व्यक्ति वहाँ नहीं मिला। और बहुत से हमारे साथी भी गए थे बिहार, वो बहुत कम नीतीश कुमार के खिलाफ रोष लोगों में था। हाँ, उनसे एक ही लोगों को कंप्लेंट थी कि भाई आप लालू जी के साथ क्यों चले गए। और अगर वो लालू के साथ नहीं जाते तो फिर मैं समझता हूँ सूखे पत्ते की तरह उड़ जाते भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ये यथार्थ है, ये सच्चाई है। और उनका स्लोगन ये था, नीतीश इज फेस, लालू इज बेस।
जी, हम अपने सहयोगी के पास चलते हैं, पंकज। पंकज जी, आप विनोद जी की पूरी बातें सुन रहे हैं, ये बताइए कि राज्य में किस तरह का असर पड़ेगा दोनों गठबंधन पर जो भी नतीजा आए?
देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है सुशीला यहाँ पे, तो जाहिर है पहली चुनौती तो यही रहेगी इस पार्टी में कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि आज तक कोई चेहरा सामने करके ये चुनाव लड़े नहीं है। तो पार्टी के जितने भी कद्दावर नेता हैं वो अपना दावा कहीं ना कहीं पेश कर रहे होंगे, और इसलिए साथ में RSS के एक शीर्ष नेता का भी नाम उठ रहा है कि इनके बीच से किसको मुख्यमंत्री पद बना जाए। लेकिन ये वो स्थिति है जब वो चुनाव जीतते हैं। अगर हारते हैं तो केंद्र की बात तो विनोद जी बता ही रहे हैं, राज्य स्तर पर हर एक नेता एक दूसरे पर ब्लेम करने के लिए तैयार बैठा है। अगर आप सूत्रों से बात करें, पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से बात करें, तो हर नेताओं का अलग अलग गुट है। तो एक बड़ी अजीब स्थिति होगी कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के अलावा राज्य के कई कद्दावर नेताओं की भी प्रतिष्ठा दांव पर है, उसमें सुशील मोदी हैं, नंद किशोर यादव हैं, और जो प्रभारी बन के यहाँ बैठे हैं अनंत कुमार, भूपेंद्र यादव, सबकी प्रतिष्ठा दांव पर है सुशीला। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी लड़ाई है चुनाव की दृष्टि से देखा जाए तो। दूसरी ओर अगर महागठबंधन की बात करें तो अगर उनकी सरकार बनती है तो लालू यादव पर ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी कि वो इस सरकार को अच्छी तरह चलाएं, क्योंकि जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि लालू यादव जिस तरह अपने कार्यकाल में दखल देते रहे हैं या पिछले कुछ दिनों में, ये आरोप लगते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ
जी,
तो उस तरह की जो आशंका है उससे पार पाने के लिए गठबंधन को बहुत सचेत होकर काम करिए, उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। लेकिन अगर वो हारते हैं तो इस कुनबे को साथ में लेकर चलना अगले 5 वर्ष तक, मुझे लगता है कि ये महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होने जा रही है, क्योंकि हार की स्थिति में शायद इस गठबंधन को आगे चला पाना बहुत मुश्किल होगा। शायद विनोद जी इस पर और रोशनी डालें।
जी विनोद जी, आप पंकज जी की बात सुन रहे हैं। दो सिनेरियो है बीजेपी बिहार में, क्या देखते हैं किस तरह का असर पड़ेगा? हमारे साथ श्रोताओं को ये भी बता दें कि अभी अभी आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा भी जुड़े हुए हैं, हम उनके पास भी जाएंगे। पहले विनोद जी,
मैं समझता हूँ कि अगर महागठबंधन की हार हो जाती है तो सबसे पहला मसला तो ये होगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा, और उस पर एक राय नहीं है। मुख्यमंत्री पद के लिए तो एक राय है कि नीतीश कुमार होंगे, और अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन नहीं जीतता है तो ये सवाल उठाया जा सकता है कि आपको तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर आप कैसे लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे? तो मेरा ये मानना है कि ये इनके हित में होगा कि इकट्ठे रहे, वरना इनकी जो पूरी देखिए ये इस पर भी निर्भर करेगा कि हार कितनी ऑनरेबल है, डिफीट कितनी ऑनरेबल है। अगर जिस तरह के पहले हम कुछ एग्जिट पोल्स देख रहे हैं
जी,
कि अगर कांटे की टक्कर है और बहुत कम सीटों से हार जीत होगी, तो फिर वो हार हार नहीं होती। वो भारतीय जनता पार्टी भी ये दावा कर सकती है और गठबंधन भी कर सकता है कि भाई हम जीत भी सकते थे इस चुनाव को, हम बदकिस्मत थे कि हम हार गए इस चुनाव को। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इससे ज़्यादा सुकून मिलेगा अगर छोटे मार्जिन से हारते हैं कि भाई ये सब लोग हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गए थे लेकिन उसके बावजूद हम जीत गए। और इस बात पे भी निर्भर करेगा, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने ये दो बातें तो कहीं, जो सहयोगी दल हैं भाजपा के उनकी साख भी अब दांव पे लगी हुई है
जी।
कि मांझी का क्या वैल्यू है वहां के पॉलिटिक्स में,
रामविलास
पासवान जी का कितना है और उपेंद्र कुशवाहा जी का कितना है। इन तीनों दलों की भी साख इस पे टिकी हुई है कि वो कितनी सीटें लाते हैं, और इनका फ्यूचर और मुस्तकबिल भी इसी बात पे टिका हुआ है कि ये कितना वैल्यू एडिशन करते हैं जो बड़ी पार्टी होती है उसके वोट संग्रह में
जी। राकेश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा की बात पूरी सुन रहे थे, आप क्या कहेंगे कि अगर बिहार में चाहे महागठबंधन जीते या एनडीए, क्या क्या असर पड़ेगा बिहार की राजनीति पर ही?
देखिए, अगर महागठबंधन चुनाव जीतती है, अगर हम ये मानकर चलें, तो बिहार के सामने एक द्रुह स्थिति इस बात के लिए आएगी कि लालू यादव रिमोट कंट्रोल नहीं करेंगे, वह नीतीश कुमार में पर काया प्रवेश करके शासन करेंगे, और यह दुविधा की स्थिति इस महागठबंधन को सुशासन नहीं देने देगा, क्योंकि लालू यादव के पास कोई विकास की दृष्टि नहीं है और वे परिवार केंद्रित हो गए हैं। सामाजिक न्याय का नारा पारिवारिक न्याय तक सिमट गया है। यदि भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो कम से कम एक बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के बीच जो एक कॉपरेटिव फेडरलिज्म की बात हुई है, वह कॉपरेटिव फेडरलिज्म बहुत ही स्वस्थ तरीके से काम करेगा। लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद जो कॉपरेटिव फेडरलिज्म की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, टीम इंडिया की बात कर रहे हैं, वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि सिर्फ राज्य और केंद्र के बीच टकराव नहीं है, ये व्यक्तिगत सत्ता में ये टकराव बदल गया है
जी। राकेश जी,
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है
जी। राकेश जी,
एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा जी की, देखिये ये लड़ाई एक वैचारिक रूप देने की कोशिश हुई है, जिसमें बिहार में ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये नकारात्मक आधार पर बना हुआ गठबंधन जीत और हार दोनों स्थिति में बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा
जी। अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। यहाँ पर एक श्रोता की मैं राय लेना चाहूंगी, ये मुकाराम हुसैन हैं बिहार, ये लिखते हैं फेसबुक पर, इन्होंने लिखा है कि बिहार में बिहार का ही मॉडल चलेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जो बिहार का है वही बिहार की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, क्योंकि जो मेरे अपने हैं उन्हीं को पता है कि मेरी समस्या क्या है। हमारे साथ फोन लाइन पर और भी कॉलर्स हैं, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं।
देखिए, मैं सबसे पहले तो एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। राकेश हमारे बहुत मित्र हैं और इन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की, प्रधानमंत्री ने जब से आए हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की और टीम इंडिया की बात की, लेकिन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की खूबसूरती यह है कि अगर आप उसको चला सकें जबकि दूसरी पार्टी विभिन्न पार्टियों की सरकारें प्रांतों में हैं, उसके बावजूद जो राकेश जी सजेस्ट कर रहे हैं वो तो यूनिटरी फॉर्म सजेस्ट कर रहे हैं
है।
इसको तो यूनिटरी फॉर्म बोलेंगे, इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो नहीं बोलेंगे। भाई, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक ही पार्टी की दो सरकारों के बीच में उतना लागू नहीं होता जितना कि विभिन्न पार्टी की दो सरकारों के बीच में लागू होता है। दोनों सरकार एक ही पार्टी की हैं तो फिर तो वो यूनिटरी फॉर्म हो गया
जी। राकेश जी हमारे साथ थोड़ी देर के लिए आए थे, उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया। हमारे साथ देखते हैं कॉलर है अभी जी। कहाँ से बोल रहे हैं
जी? हम बक्सर बिहार से बोल रहे हैं।
क्या नाम हुआ आपका?
जी, शारदानंद सिंह
जी। माफ कीजिएगा, दोबारा बोलिए अपना नाम।
शारदानंद
जी। शारदा जी, बताइए, आप पूरी बहस सुन रहे हैं?
हाँ जी सर, सुन रहे हैं। देखिए, बिहार की तो नीतीश जी को पकड़ देना आसान बात नहीं है बीजेपी से।
जी
जी हाँ, अब इस 10 बरस देखा जाए ऐसा पीएम अगर हमारे भारत में कोई हुआ है तो थोड़ा बहुत मोदी को ही कहा जा सकता है। यहाँ के रिकॉर्ड रखते हैं हमारे सीएम
जी। शारदा जी आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, पर अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी कहाँ से बोल रहे हैं?
हेलो
जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
मैं बराबर कानपुर देहात से बोल रहा हूँ।
जी आपका नाम क्या हुआ?
प्रताप प्रचार।
जी प्रताप जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप, पूरी बहस सुन रहे हैं।
हाँ सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ
जी
कि जो महागठबंधन है
जी,
ये स्वार्थवादियों का कुनबा परस्ती लोगों का गठबंधन
आपको जी हाँ, आपको ऐसा क्यों लगता है?
ये लगता है कि जैसे वो लालू जी है अपने पूरे परिवार को खड़ा कर दिए हैं और वो विकास की बात नहीं करते हैं, जातिवाद संप्रदायवाद भड़का रहे हैं, इसलिए बीजेपी गठबंधन को जीतना बहुत जरूरी है।
जी अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रताप जी। वैसे ये हम इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं कि जब बिहार चुनाव हो रहे थे तब विकास का मुद्दा जो है गौण हो गया था और फिर जातिवाद आरक्षण ये सब मुद्दों ने घेर लिया था, गाय का मुद्दा आ गया था जी, गौ मास का मुद्दा आ गया था। यहाँ पर अगर हम राष्ट्रीय राजनीति की बात करें विनोद जी, तो अब आप क्या देखते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने नीतीश कुमार का समर्थन किया, अरविंद केजरीवाल जो है वो आए और उन्होंने ट्विटर पर साफ कहा कि लोग नीतीश कुमार लिए वोट करें, तो आगामी अब अगले साल जो है कई राज्यों में चुनाव होने हैं, केरल में होने हैं, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, क्या देखते हैं कितना असर पड़ेगा इन राज्यों?
देखिए जिन लोगों का नाम लिया आपने वो मास लीडर्स हैं, ममता बनर्जी के आप पक्ष में हो सकते हैं, उनके विपक्ष में हो सकते हैं, तो इस बात से आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि वो मास लीडर हैं। उसी तरह से अरविंद केजरीवाल भी मास लीडर हैं, नीतीश भी मास लीडर हैं और लालू भी मास लीडर हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर बिहार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता है तो उसका सीधा सीधा असर उत्तर प्रदेश में होगा, वेस्ट बंगाल में होगा, असम में होगा, वो प्रांत जहां अभी चुनाव होने वाले हैं। इसलिए नहीं होगा कि इनकी जो इनका जो डेमोग्राफिक मिक्स है, यहां पर जो पॉपुलेशन वैसी है इन प्रांतों में नहीं, इसलिए नहीं, ये एक तरह से मनोबल की बात होती है। मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि जब कांग्रेस पार्टी 3 इलेक्शन प्रांतों में हार गई तो उसका मनोबल टूट गया 2014 के इलेक्शन से पहले, और इसीलिए 2014 का इलेक्शन जो है वो सिंगल हॉर्स रेस हो गया, कांग्रेस लुप्त हो गई ज़मीन से, और माननीय नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई विपक्ष नज़र ही नहीं आता था बाहसियत प्रधानमंत्री पद के दावेदार के। तो मैं समझता हूँ कि इसका मनोबल पर असर होगा, और पॉलिटिक्स जो है वो इकबाल से चलता है, मनोबल से चलता है, जनता की जो आप में आस्था होती है उससे चलता है। तो इसलिए पब्लिक परसेप्शन जो है वो राजनीति में बहुत अहम होती है कि जनता क्या सोच रही है। तो इसलिए बहुत अहम है बिहार का चुनाव, ना सिर्फ बिहार के लिए, राष्ट्र के लिए, बल्कि उन प्रांतों के लिए जहाँ अभी इलेक्शन होने वाले हैं।
जी तो बहुत अहम है बिहार का चुनाव, और वो भी असर डालेगा असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, गोवा जो अगले साल जहां चुनाव होना है, उसके बाद उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं। तो बस कल का इंतज़ार है और कल पता चल जाएगा कि किस तरह का असर पड़ेगा अन्य बिहार पर और अन्य राज्यों पर भी इसका, राष्ट्रीय राजनीति पर। बहुत बहुत धन्यवाद।
इंडिया बोल में
जी बहुत बड़ा दिन होगा,
वर्ल्ड वॉर टू एनालॉजी
जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया बोल में शामिल होने के लिए विनोद जी, पंकज प्रदर्शी, श्रोताओं और राकेश सिन्हा आपका भी। और अब सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। मिस्र के मुताबिक विदेशी खुफिया एजेंसियों ने सिनाई में दुर्घटनाग्रस्त विमान में बम रखे होने के बारे में कोई जानकारी उसके सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा नहीं की है। वहीं मिस्र के शर्म अल शेख रिजॉर्ट में फंसे यात्रियों को उनके देश भेजने का काम जारी है। मिस्र में मौजूद करीब 80,000 रूसी लोगों को भी वापस भेजने के इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर के लिए 80,000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है। चीन और ताइवान के नेताओं के बीच 67 साल के बाद ऐतिहासिक बातचीत आज सिंगापुर में हुई। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। इसी के साथ इंडिया बोल में आज बस इतना ही। आपसे 9:30 घटना चक्र में ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक तकनीकी सहयोगी देवाशीष कुमार के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।